नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। दिल्ली बम विस्फोट को देखते हुए प्रदेश में भी सघन तलाशी अभियान, सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भारत और सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए साझा प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत गणना फॉर्म वितरण का आंकड़ा 3.5 करोड़ के पार। और राज्य में कई स्थानों पर सर्द हवाओं का असर, टोंक और सीकर में शीतलहर के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर की गई छापेमारी में सुरक्षा एजेंसियों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। 9 और 10 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद में की गई छापेमारी के दौरान एजेंसियों ने लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक के साथ डेटोनेटर, टाइमर और बम बनाने की अन्य सामग्री जब्त की। सूत्रों ने बताया कि बढ़ते दबाव के कारण ही संदिग्ध ने दिल्ली बम कांड में ये कदम उठाया। विस्फोट सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए की गई छापेमारी के कारण फैली घबराहट में हुआ। बम समय से पहले ही फट गया और पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, इसीलिए असर सीमित रहा। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हनुमानगढ़ तक पहुंचाए गए थे, वहीं से इनकी आगे सप्लाई की गई थी। दिल्ली बम विस्फोट देखते हुए प्रदेश में भी सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत और सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे दोनों देशों के बीच कला संस्कृति से जुड़े आयोजनों में भागीदारी बढ़ाने और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये एमओयू हमारी साझी विरासत को सशक्त करेगा, इसके साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
आने वाले समय में टूरिज्म को सस्टेनेबल किस तरह से बनाया जाए, टूरिज्म को इको फ्रेंडली किस तरह से बनाया जाए और टूरिज्म को जो है डिसेंट्रलाइज किस तरह से किया जाए, इस पर व्यापक विचार विमर्श वहाँ हुआ है। सऊदी अरब में लगभग 27 लाख भारतीय निवास, बड़ी भारतीयों की आबादी वहाँ है और सऊदी अरब की सरकार ने भारत वंशियों के मनोरंजन के लिए और जो एक्सपैक्ट पॉपुलेशन जो भी वहाँ रहती है वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहे, इस लक्ष्य को लेकर के अनेक कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए हैं। अभी वहाँ एक उन्होंने ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव के तहत एक सुविधा पार्क डेवलप किया है जिसमें हर एक देश के कल्चर को डिपिक्ट करते हुए वहाँ का क्राफ्ट, वहाँ का क्यूजीन, वहाँ का भोजन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का गीत संगीत, वहाँ का परिधान, ये सब 10-10 दिन के लिए हर देश की ऐसी संस्कृति को डिपिक्ट किया जाता है।
बारां जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए 80.32% मतदान दर्ज किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि अंता में मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कड़ी सुरक्षा के बीच भयमुक्त वातावरण में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटों की गिनती 14 नवम्बर को बारां के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होगी। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पूरा कॉलेज परिसर सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। अंता सीट को त्रिकोणीय संघर्ष वाली माना जा रहा है। कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरजीएस परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा रजिस्ट्रार की ओर से जारी सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती परिणाम में श्रेणीवार कट ऑफ अंक भी घोषित किए गए हैं। 11-12 अक्टूबर को जोधपुर और जयपुर में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज स्वास्थ्य जागरूकता और चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन ब्लॉक स्तरीय शिविरों में निशुल्क स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इसी कड़ी में पाली सीएमएचओ ने बताया कि जिले के देसूरी, सुमेरपुर, रानी, सोजत और रोहट सहित विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं। हनुमानगढ़ में भी इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच के साथ ही बच्चों के टीकाकरण सहित अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। माधोपुर में इन शिविरों में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत संभावित लक्षण वाले रोगियों की भी जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जनजातीय गौरव पखवाड़े के तहत कई अन्य गतिविधियां भी हो रही हैं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कल स्वायत्त एवं शासन विभाग की ओर से जिले के प्रमुख पार्क, चौराहे, सड़कों, राजकीय भवनों पर रोशनी की जाएगी तथा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर नामकरण आदि के कार्यक्रम होंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजाति गौरव वर्ष के अंतर्गत जिले में अब तक भगवान बिरसा मुंडा पर भाषण, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी, कृषक संगोष्ठी, स्वयं सहायता समूहों के गठन, स्वास्थ्य शिविर, फिल्म प्रदर्शन, विकास प्रदर्शनी आदि के आयोजन हो रहे हैं। यह कार्यक्रम 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस तक आयोजित होंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में SIR प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से अब तक गणना फॉर्म वितरण का आंकड़ा 3.5 करोड़ के पार पहुंच गया है। राज्य के 64% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में पिछले 8 दिनों में 85% वितरण के साथ झालावाड़ अग्रणी जिला बना हुआ है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर में भी 75% से अधिक वितरण किया जा चुका है। राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने करीब 12,500 वाहनों का चालान किया है। इनमें ओवरलोडिंग करने वाले मालवाहक वाहन शामिल हैं। उधर पुलिस ने लापरवाही और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले 2,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की। इनमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले और तेज रफ्तार से ड्राइविंग करने वाले चालक शामिल हैं। 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत करीब 3,00,000 लोगों को यातायात नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक किया गया। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आम लोगों को एक गंभीर धोखाधड़ी के प्रति सचेत किया है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि हाल ही में अपराधियों ने ठगी के लिए नया तरीका अपनाया है। वे लोगों को कॉल कर खुद का बड़ा पुलिस अधिकारी बताते हुए धमका रहे हैं और हाल ही में हुए कार ब्लास्ट की घटना में शामिल होने की बात करते हैं। संदिग्ध कॉल की शिकायत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर हेल्प डेस्क 112 पर करें। पुलिस उप महानिरीक्षक साइबर क्राइम विकास शर्मा ने आमजन को सलाह दी है कि वो इस तरह का कॉल आने पर बिल्कुल नहीं घबराएं और किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी खाते संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करें। प्रदेश में कई स्थानों पर सर्द हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल 9 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं 6.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सीकर का फतेहपुर सबसे सर्द रहा। सिरोही, नागौर, चूरू, बारा, पिलानी और लूणकरणसर में भी ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार ठंड ने जल्दी दस्तक दे दी है।
पहाड़ी इलाकों में पड़ रही बर्फ से चूरू जिले में ठंड का असर आज पूरी तरह से महसूस किया गया है। कल देर शाम से ही यहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शहर के कई इलाकों में खुले में बसेरा करने वाले लोगों को रात को पुलिया व सड़क स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। वहीं सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों को भी काफी समस्या हुई। सुबह पार्कों में घूमने जाने वाले लोगों को गर्म कपड़े पहने हुए देखा गया। लोगों का मानना है कि इस बार ठंड ने पहले ही दस्तक दे दी है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज से टोंक में 2 दिन और सीकर में अगले 5 दिन शीतलहर चलने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली बम विस्फोट को देखते हुए प्रदेश में भी सघन तलाशी अभियान, सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भारत और सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए साझा प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में SIR प्रक्रिया के तहत गणना फॉर्म वितरण का आंकड़ा 3.5 करोड़ के पार। और राज्य में कई स्थानों पर सर्द हवाओं का असर, टोंक और सीकर में शीतलहर के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।